मीठे प्यारे बाप दादा की इस मधुबन प्रांगण तपस्या भूमि में आप सभी दिल्ली निवासियों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच तपस्या के इस सुंदर लहर के शुभारंभ के लिए 3 दिन हम बहुत गहन तपस्या कर सके, इसके लक्ष्य के लिए हमारे बीच हमारी आदरणीय शीलू बहन उपस्थित है। हम आपका भी आज बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मधुरता जिन्हों के जीवन का पर्याय रही है, ऐसी हमारी मीठी मीठी शीलू बहन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें भट्टी का लक्ष्य, भट्टी का उद्देश्य, तपस्या के लिए प्यारे बाप दादा के जो विशेष इशारे हैं समय प्रति, उन्हें हमें अंडरलाइन भी कराएं और हमारी इन 3 दिन की मौन तपस्या के लिए हमें लक्ष्मी प्रदान करें। आदरणीय शीलू बहन,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बेहद बाप के घर में, या यूं कहें बाप दादा के घर में आप सभी दिल्ली राजधानी से पधारे हैं। गर्मी के मौसम में दिल्ली में तो बहुत गर्मी होगी, गर्मी है ना बहुत। यहाँ भी आजकल थोड़ी थोड़ी गर्मी तो है ही, लेकिन फिर भी दिल्ली से तो कम होगी ना। मौसम तो बदलता ही रहता है, तो ऐसे तपत वाले स्थान से तपोभूमि में आप आए हो, मधुबन वरदान भूमि, तपस्या भूमि, परिवर्तन भूमि है, जहाँ स्वयं भगवान ने ब्रह्मा बाबा द्वारा सारे विश्व की आत्माओं के लिए यह ज्ञान हम बच्चों को दिया। यहाँ के कण कण में बाबा के कर्तव्यों की सुगंध समाई हुई है। दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े बड़े वीआईपीस भी पांडव भवन खास आते हैं शांति स्तंभ पर ब्रह्मा बाबा को श्रद्धांजलि देने। बिल्कुल टाइम नहीं होता है उनके पास और बहुत कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, लेकिन कहेंगे कि नहीं, ब्रह्मा बाबा के शांति स्तंभ पर जरूर जाना है। तो कैसे भी करके अपना टाइम निकाल कर सबसे पहले शांति स्तंभ पर आएंगे और ब्रह्मा बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फिर कहेंगे, फिर हम कहेंगे अच्छा भाई, उनको जो उनके होते ना, जो उनके अंगरक्षक या जो उनका प्रोटोकॉल करते हैं, वो कहेंगे अभी बस और टाइम नहीं है, अभी बिल्कुल जाना है, निकलना है। तो उनको कोई कह देगा पर बाबा का कमरा तो देखेंगे। हाँ, क्यों नहीं देखेंगे बाबा का कमरा, वो तो और तपस्या का स्थान होगा। चलो तो सब प्रोटोकॉल को भी हटा करके बाबा के कमरे में आएंगे। तो बाबा के कमरे में बैठेंगे, वाइब्रेशंस लेंगे, फिर उनसे कहेंगे कोई समझे नाना कर रहे हैं ना उनके ईडीसी या कोई, तो फिर उनको कहा जाता है बाबा ने जहाँ वाणी चलाई वो नहीं देखेंगे। हाँ, जरूर देखेंगे। तो बाबा के हिस्ट्री हॉल में भी पहुंच जाते हैं। फिर झोपड़ी के लिए हम इतना जोर नहीं करते क्योंकि बाबा के कमरे में तो आ गए ना, और हिस्ट्री हॉल में भी आ गए। लेकिन जिनको थोड़ा शेष समय होता है तो बाबा की झोपड़ी भी जरूर दिखाते हैं। ये VIPs की बात है, VVIPs जो आते हैं, बाकी तो आते ही हैं। तो इसीलिए जब यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है ये स्थान क्या है। और जगह जाते हैं तो चलो ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पीस पार्क जाते हैं, म्यूजियम भी कोई कोई जाते हैं, वहाँ तो ज्ञान का विस्तार उनको मिलता है, लेकिन सच्ची शांति का अनुभव वो पांडव भवन में ही करते हैं। और फिर जब उनको बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने, जिन्होंने 14 साल पहले कराची में तपस्या की और फिर यहाँ आए और यहाँ माउंट आबू में यहाँ तपस्या की उन्होंने, और कैसे यहाँ से ही विश्व की सेवा शुरू हुई, तो वो सचमुच गदगद हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत पूछते हैं, जो वैसे देखेंगे इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत पूछते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा यहाँ कब आए, आबू में कितना समय रहे, फिर कैसे किया, क्या किया, इंटरेस्ट जागता है, नहीं तो कहाँ उनको बुद्धि में आएगा। और सचमुच ये पूरी जानकारी बाबा की लेके जाते हैं। तो ये है पांडव भवन, बाबा की ओरिजिनल तपस्या भूमि, इसका महत्व। जब शांति स्तंभ बाबा का बना था और उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, तो बाप दादा से पूछा गया कि बाबा जैसे पांडव भवन में शांति स्तंभ बनाया है, वैसे हम ज्ञान सरोवर में भी एक बनाएं। बाबा ने बिल्कुल मना किया, और कहीं भी ये बन नहीं सकता है, ये केवल पांडव भवन के लिए ही है, वहाँ ही होगा। ज्ञान सरोवर में शांति स्तंभ का क्या महत्व होगा, क्योंकि ये स्थान का महत्व है। चलो भले मेडिटेशन रूम बनाएं, उसको बाबा का कमरा भी कह दें, लेकिन ये कमरा तो उस जैसा तो कहीं नहीं होगा। और इसलिए जो ब्रह्मा बाबा ने चीजें यूज की, वही पलंग है, वही गद्दी है, हिस्ट्री हॉल में भी वही गद्दी है, जहाँ बाबा बैठते थे, बहुतों ने राय दी कि ये जो गद्दी है ना हिस्ट्री हॉल में, अभी थोड़ा ऐसा होना चाहिए। लेकिन बड़ों ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे था, जहाँ बाबा बैठते थे बिल्कुल कैसे बैठते थे बाबा, अर्ध पद्मासन पर बैठते थे, लास्ट तक बाबा उसी गद्दी पर बैठते थे, मम्मा उसके दूसरे गद्दी पर। इसीलिए उसको एक बार चेंज भी किया, कुछ और दूसरे प्रकार की कुर्सी रखी, सब ने कहा नहीं 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 वही वापस रखो भावना होती है। शांति स्तंभ में काफी जो मार्बल है वो थोड़ा घिस भी गया है, काला भी पड़ गया है, अक्षर भी थोड़े फेड होते रहते हैं, तो चलो उसको तो पेंट कराते रहते हैं। लेकिन कईयों ने ये भी राय दी कि हटा करके दूसरा अच्छा वाला चमकता हुआ मार्बल तो बहुत अच्छा आता है वो लगाएं। फिर जब सोचा क्या करें क्या करें, फिर बाबा से पूछा गया, बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, उसको हाथ नहीं लगाना है, जो ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल ही होता है, भले मरम्मत करते हैं साफ करते हैं रंग कुछ, वो जो लेटर्स हैं अक्षर वो थोड़े फेड हो जाते हैं उसको ठीक करते हैं, लेकिन वो मार्बल ही चेंज करते हैं उनके स्लैब्स बिल्कुल मना करते हैं। आप लोगों का क्या विचार है, चेंज करना चाहिए या वैसे ही रहे? तो भावना की चीज है। तो देखो बाबा कैसे इस पावन तपोभूमि में यही कहते रहे, जब हिस्ट्री हॉल में बाबा वाणी चलाते थे तो बाबा के सामने कितने थोड़े बच्चे होते थे, कितने पांडव भवन में तो मधुबन में तो कोई ज्यादा तो रहते नहीं थे, बहनें तो जैसे ना के बराबर थे, क्योंकि बाबा बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे, जो पुरानी यज्ञ की बुजुर्ग बुजुर्ग थी जो कहीं जा नहीं पाती थी वो तो चलो मधुबन में थी, लेकिन बाबा जो और बहनों को जो सर्विसेबल हैंड्स थे बाबा उनको मधुबन में रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे तुम बच्चे यहाँ रह के क्या करोगे, तुमको तो सर्विस पर जाना है। दादी प्रकाशमणि अपना कितना अनुभव सुनाती थी कि दादी जी कई बार सेवा करके बहुत दूर दूर सेवा करके जब मधुबन आती थी तो बाबा उनको कहते थे अच्छा बच्ची आप आ गई अभी फलानी जगह जाओ, तो दादी बाबा को कहती थी बाबा आज ही तो आई हूँ इतना बड़ा टूर करके, बाबा एक दो दिन तो यहाँ तपस्या करूँ। बाबा कहते थे कोई नहीं नहीं बिल्कुल जाना है, हाँ यहाँ रह के क्या करोगे। जब 1952 में माउंट आबू आए तो सब ने ऐसे ही सोचा था बस बाबा के साथ ही हम रहेंगे, बाबा के साथ में ही जाएंगे वापस, बस ऐसे ही होगा। लेकिन 1952 भारत में जब आए, मतलब आए 50 में आए, फिर 52 से बाबा ने एक 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 करके सबको भेजा, जाओ सेवा पर जाओ जाओ सेवा पर जाओ। तो दादियों की तो इच्छा होती थी बाबा के साथ रहें पर बाबा रहने नहीं देते थे, तो वैसे ही बहनों को कहते थे नहीं आपके स्थान सेवा केंद्र है, पांडव भवन ये पांडव भवन है, पांडवों का भवन है, क्योंकि जो यहाँ पर परमानेंट बाबा रखते थे तो वो तो उनके लिए थे जैसे कोई स्किल्ड वर्क करने वाले, किचन में काम करने वाले, बगीचे का काम करने वाले, कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन मतलब, और वो समर्पित होते थे, भाई होते थे, और किचन में भी भाई चाहिए थे क्योंकि बड़े बड़े पतीले उठाना अब बहनों का तो काम नहीं है ये सब, तो इसीलिए भाई सब करते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो देखो कैसे ड्रामा बदल गया, बाबा अव्यक्त होते ही बाबा ने सब दादियों को मधुबन में बुला लिया, जो साकार में बाबा ने सबको सेवा पर भेजा और अव्यक्त होने के बाद सबको मधुबन बुलाया। और मधुबन में बाबा ने खास कहा कि अभी यहाँ बठिया करो, अभी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो, रिफ्रेशर कोर्सेस करो, टीचर्स के लिए, कुमारियों के लिए, कुमारों के लिए, युगलों के लिए, ये सब करो मधुबन में। और उसके लिए दादियों को मधुबन में रखा। पहले तो मम्मा थी, मम्मा ही कंट्रोलर थी, मम्मा ही सब संभालती थी। फिर मम्मा की अव्यक्त होने के बाद बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, वो उनको दिल्ली से बुलाया, दिल्ली में रहती थी मनमोहिनी दीदी, कमला नगर में ही रहती थी। गुलजार दादी भी वहीं रहती थी जो शुरू का कमला नगर है, शक्ति नगर तो बाद में हुआ, पहले कमला नगर सबसे पहला सेंटर जहाँ जगदीश भाई 1952 में सबसे पहले कुमार समर्पित हुए बाबा के यज्ञ में, यज्ञ के बाद। तो देखो फिर बाबा ने सब दादियों को मधुबन में बुला लिया और फिर दादी जी ने बहनों को रखना शुरू किया। मुझे याद है 1976 में जब विदेशों में सेवाएं शुरू हुई तो विदेशी यहाँ आने लगे। अब यहाँ विदेशियों की सेवा कौन करेगा, ट्रांसलेशन चाहिए, क्लासेस चाहिए विदेशियों के लिए। तो फिर दादी जी ने, मैं अफ्रीका मॉरिशस से आई थी, तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। तो सबसे पहली मानव टीचर बहन मधुबन में बाबा ने हमको मुकरर किया। और बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने भी वरदान दिया मुझे कि बाबा ने मेरे से पूछा तुम कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा ज्ञान गंगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो सब टीचर्स है, जो भी ज्ञान सुनाते वो सब ज्ञान गंगाएं हैं, आप कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, गंगा बहती है ना, बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगा तो वो है जो सेवा केंद्रों पर रहती है, क्योंकि वो बहती जाती है, एक ठिकाना तो होता नहीं बहनों का, आज यहाँ है कल दूसरे सेवा केंद्र पर ट्रांसफर हो गई, परसों तीसरे सेवा केंद्र पर ट्रांसफर हो गई। स्टूडेंट्स तो वहीं रहते हैं, स्टूडेंट्स तो बदली नहीं होते हैं, टीचर्स बदली होती रहती है। उस समय तो बहुत ज्यादा बदली होती थी, कोई भी ठिकाना नहीं था, एक ही एक किसी एक ही सेंटर पर बदली होते रहते थे। तो जो सेवा केंद्रों पर बहने रहती है वो बहती गंगा है, क्योंकि वो बहती जाती है। और जो भक्त है वो तो वहीं होते हैं, भक्त अपने शहर में रहेंगे और गंगा बहती जाएगी, आप कौन सी गंगा हो। अब मुझे तीसरी गंगा का तो नाम ही नहीं आया, और तीसरी गंगा कौन सी होती है। तो बाबा ने कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो, ये बाबा ने उस समय वरदान दिया था, हर की पौड़ी की गंगा। तो मैं तो बस सुनती रही, देखती रही बाबा को। तो बाबा ने कहा देखो हर की पौड़ी की गंगा का कितना महत्व होता है। तो मैं सुनती रही, देखो हर की पौड़ी की गंगा है ना, वहाँ सारी दुनिया आती है, बाकी तो गंगा में नहाते हैं, पर हर की पौड़ी की गंगा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सारी दुनिया उस हर की पौड़ी में नहाने आती है। तो आप वो हर की पौड़ी की गंगा हो जहाँ सारी दुनिया आके आप में नहाएगी, इतना बड़ा वरदान बाबा ने दे दिया। तो उस समय मैंने सोचा, क्योंकि मैं विदेश से आई थी और दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, तो मधुबन की तो महानता है ही है, लेकिन थोड़ा विदेश भी खींच रहा था। तो क्योंकि 2 साल सेवा की, मॉरिशियस की सेवा की स्थापना की, अफ्रीका में 1 साल रहे, वहाँ 1 साल मनो सेवा अच्छी वृद्धि को पाई थी। और फिर दादी जी ने जब यहाँ रखा विदेशियों की सेवा के लिए और योग शिविर के लिए, फिर तो मधुबन के ही रहे। लेकिन बाबा ने इतना ऊंचा कार्य बाबा ने दे दिया। तो देखो मधुबन की महिमा क्या है, सारी दुनिया यहाँ आती है, विदेश में कोई जाए न जाए, लेकिन यहाँ सभी देशों के भाई बहने आते हैं। कितने 140 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं, 140 देशों के भाई बहने भी आते हैं अलग अलग टाइम्स पर, तो ऐसे लगता है कई बार कि हम मधुबन में तो हैं लेकिन सारा विश्व यहाँ है, तो जैसे विश्व में हम हैं। तो ये है मधुबन की महिमा, जहाँ बाबा कहते हैं मधु भी है और वन भी है। मधु माना मिठास, शहद, और वन माना जंगल। तो मधु माना संगठन और वन माना अकेला, हाँ एकांत, अकेला। वन में तो जंगल में तो अकेले ही होते हैं ना, तो यहाँ एकांत भी है और साथ साथ संगठन भी है, दोनों ही अनुभव कर सकते हैं। संगठन का भी इतना विशाल अनुभव यहाँ हो सकता है क्योंकि कितनों के बीच में रहते हैं, और अकेला चाहो तो अकेले भी, बस एकांत में कहीं जाके बैठ जाओ बहुत अच्छा लगेगा। बाबा मुरलियों में कहा करते थे कि यहाँ बड़े बड़े कोठे हैं, बगीचे हैं, तो वहाँ कोठे पर जाके बैठ जाओ, बगीचे भी बहुत है, ओम शांति भवन में भी हैं, ऊपर भी है, टेरेस गार्डन भी है ओम शांति भवन के पीछे, तो वहाँ बैठ जाओ तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बस दुनिया की निगाहों से एकदम दूर है, बस बाबा और मैं और कोई नहीं। पर जितना संगठन में बल है उतना फिर एकांत में भी बल है, दोनों में अपना अपना बल है। संगठन का बल अपना है, सबसे मिलकर रहना, इसके लिए भी बहादुरी चाहिए, और एकांत में चले जाना इसके लिए भी बहादुरी चाहिए। कहीं तो वो डरते हैं कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन बाबा ने दोनों का यहाँ अनुभव कराया है बच्चों को। तो आप सभी आए हो ऐसे शक्तिशाली स्थान पर, जब से मधुबन में बठियाँ शुरू हुई है तब से तो मधुबन की रौनक तो और बढ़ गई है, क्योंकि पांडव भवन के बाद जब ज्ञान सरोवर बना तो यही लगा कि भाई अभी तो सेवा का स्वरूप, तो सेवा का जो प्लान्स है जो भी है वो सब ज्ञान सरोवर में होगा, विंग्स के प्रोग्राम में तो सर तो सब कुछ यही होता था, शिविर भी यही होती थी, इसी हॉल में होती थी। फिर ज्ञान सरोवर बना तो वहाँ के प्रोग्राम होने लगे, फिर शांति वन बना तो वो तो और विशाल हो गया, वो तो सब कुछ बेहद हो गया। लेकिन ये वो डिमांड थी सबकी कि अब हम लोग जब शांति वन में आते हैं तो फिर तो पांडव भवन में आने का तो मौका ही नहीं मिलता है। पुराने पुराने तो खास कहते हैं क्योंकि आते हैं नीचे ही प्रोग्राम होता है फिर नीचे से जाना होता है, तो हमको मधुबन में बठी करनी है, मधुबन में तपस्या करनी है। तो देखो तब से 2-3 साल से पांडव भवन में ये बठियों के प्रोग्राम शुरू किए, और शक्ति नगर वालों का पहली बार है या पहले किया है, पिछले साल पहली बार है। अच्छा, तो हमारी मुन्नी बहन कहती इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं हर एक को कहती हूँ अभी अगले साल पूछना, अभी ये पूरा हुआ इस सीजन का, क्योंकि यही मौसम होता है। फिर अक्टूबर से तो फॉरेनर्स की सीजन चालू हो जाती है, तो यहाँ डबल विदेशी होते हैं। अक्टूबर से मार्च तक तो हम कुछ भी नहीं रख सकते पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में विदेशी होते हैं, फिर तो ये इंटरनेशनल लगता है पूरा। और पांडव और डबल विदेशी जो है वो तो पांडव भवन में रहना चाहते हैं, कितने पुराने पुराने वो कहेंगे हम ज्ञान सरोवर नहीं जाएंगे, हम शांतिवन नहीं जाएंगे, हमको तो पांडव भवन में रहना। हम कहते हैं भाई क्लासेस तो ज्ञान सरोवर में होते हैं, वहाँ रहो नहीं, यहीं रहना है, तपस्या करनी तपस्या करनी। तो अभी टीचर्स भी आती है, बस हमको 2 दिन मधुबन में रखो, हम तपस्या करेंगे तपस्या करेंगे। तो देखो आप तो कितने लकी हो, आपको मधुबन में ही रहने का निमंत्रण मिला। हाँ, तो देखो कितने लकी हो। तो अभी ये 3 दिन क्या करेंगे, आप सभी को बैज मिला, बैज में आपने पढ़ा इस क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ मौन तपस्या योग बट्टी ऐसे लिखा है ना, मौन तपस्या योग बट्टी, तो बैज लगाते समय कुछ संकल्प चले कि 3 दिन मौन में रहना है। रहेंगे मौन में, रह सकते हैं, जो रह सकते हैं 3 दिन पूरा मौन में वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब रह सकते, एक दो को देख करके नहीं हाथ उठाना। सचमुच बाबा देख रहा है हाँ? जी हाँ? कई बार पूछते ना, बाबा पूछते हैं मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है, शांत रहना सहज है या आवाज में आना सहज है, सहज क्या है, सहज क्या है, आवाज में आना कि मौन में रहना हा? अच्छा लगता है वो अलग बात है, लेकिन सहज क्या है, आवाज में आना सहज है, और मौन में रहना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं है। हाथ तो उठा लिया पर पता चले मुश्किल है कि सहज है, क्योंकि अंदर तो बहुत होता है कुछ बोलूं कुछ बोलूं हाँ कुछ बोलूं, तो इसीलिए मौन में रहना मुश्किल है। अब ये भी एक आपकी तपस्या होगी कि मौन केवल मुख का न हो, क्योंकि मुख का मौन फिर भी सहज है, हम बोलना नहीं है ठीक है नहीं बोलूं मैं चुप रहूंगी। एक मुझे याद है मैं छोटी थी तो एक फिल्म देखी थी मैं चुप रहूंगी, है ना, बहुत पुरानी फिल्म, मैं चुप रहूंगी। बेचारी के आगे कितनी परीक्षाएं आई, कितनी बातें आई, लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकालती थी, पर आखिर तो उसी की विजय हुई। हाँ, शांत रहने में वो कितने अपने आप को वो लगन में मगन रखती थी, उसने निश्चय कर लिया मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगी, हर बार में ये कि मैं चुप रहूंगी। तो देखो दुनिया में भी ये कहते तो हैं, पहले तोलो फिर बोलो, तोलने से पहले बोलो नहीं। क्रोध की किसने परिभाषा दी है, क्या परिभाषा दी क्रोध की, कि क्रोध क्या है, हाँ, जब सोचने से ज्यादा बोलते हैं तब क्रोध आता है। अगर सोच कर बोलेंगे तो क्रोध आएगा, क्रोध के समय सोचना होता है, सोच कर क्रोध करते हैं या बिना सोचे तो बिना सोचे, तो इंग्लिश में कहते हैं व्हेन द टंग वर्क्स फास्टर देन द माइंड, जब जीभ मन से ज्यादा तेज चलती है वो है क्रोध। तो बाबा ने हमको कौन सा स्लोगन दिया है, वैसे तो ये आपस में इनका बड़ा संबंध है, कम बोलो धीरे बोलो मधुर बोलो और युक्ति युक्त बोलो, समझ कर बोलो, बोलना भी है तो ये 5 बातें याद रखो, क्योंकि इनका आपस में संबंध है। कम बोलना है ये लक्ष्य होगा तो जरूर धीरे बोलेंगे, ये हो ही नहीं सकता है कि कम बोले और जोर से बोले, है देखो ना आपस में इनका कनेक्शन है। तो कम बोलना बोलने का लक्ष्य होगा तो धीरे ही बोलेंगे, और धीरे बोलने का लक्ष्य होगा तो मधुर ही बोलेंगे। धीरे से गुस्सा किया जा सकता है, गुस्सा किया जा सकता है धीरे से, कैसे होते हैं बोलते नहीं है पर एक्शंस काम करते हैं, तो धीरे से गुस्सा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कम बोलो तो धीरे बोलो, फिर ऑटोमेटिकली मधुर हो ही जाएगा, और मधुर होगा तो जरूर अंदर में होगा कि मुझे युक्ति युक्त बोलना है, किसी को दुख न मिले, तो इसीलिए युक्ति युक्त भी बोलना है, समझ कर बोलना है, इसका आदि मध्य अंत क्या नतीजा होगा, क्या परिणाम होगा, वो सब सोच कर बोलना है। तो कितना धीरे बोलेंगे, पर ये सब नहीं है तो तो जुबान चलती रहती है। जब आवश्यकता नहीं है तो भी, मतलब आवाज में आना है क्योंकि कंट्रोल नहीं है। परंतु बाबा के बच्चों को तो बाबा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। यहाँ पर अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब सफल करना है। एक एक घड़ी आपकी सफल जाए, क्योंकि व्यर्थ सोच मन में चलेगा तो सफल थोड़ी हुई घड़ी। समर्थ संकल्प चलेगा तभी तो सफल होगी वो घड़ी। तो श्वास भी सफल, समय भी सफल, संकल्प भी सफल और शक्ति भी सफल, क्योंकि यही वास्तव में संगम पर हमारा ये खजाना है। ज्ञान, गुण, शक्तियां वो तो है ही, वो तो बाबा दे रहे हैं, लेकिन समय, श्वास, संकल्प, शक्ति ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी, ज्ञान, गुण, शक्तियां बाबा ने हमें दी है संभालने के लिए, उनको सफल करने के लिए। ज्ञान हम अपने पास रखते हैं फिर देते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। गुणों का दान करते हैं, शक्तियों का दान करते हैं मनसा वाचा कर्मणा से। लेकिन ये तब होगा जब ये लक्ष्य होगा कि ये जो चार है ना, समय, श्वास, संकल्प और शक्ति, इनको सफल करना है। मेरा एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक ये शक्ति, ये भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि बहुत व्यर्थ जाता है बहुत। और संगम युग का कितना महत्व है, बाबा कहते एक एक सेकेंड संगम युग का एक साल के बराबर है। वो एक सेकेंड गया जैसे कि एक साल चला गया। इसीलिए ये तीन चार दिन ये बहुत ऊंचा लक्ष्य हमारा हो कि जब देखो कुछ ऐसा, मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, संकल्प व्यर्थ जा रहा है, श्वास व्यर्थ जा रहा है, तो शक्ति व्यर्थ जा रही है एकदम। बाबा कई बार कहते हैं देखो एक कछुए को भी अकल है, क्या अकल है कछुए को, जब उसको चलना होता है तो अंग निकालता है पर नहीं चलना होता है तो एक कछुए को, जो एक जानवर है, बुद्धि नहीं है इनको, पर उतनी तो अकल है कि हमको अपने अंगों को अंदर सुरक्षित रखना है। एक पंछी को भी इतनी अकल है कि जब देखता है कि कुछ गड़बड़ है फट से उड़ जाएगा, पंख है वो क्यों धरती पर रहेगा, पर कुछ गड़बड़ है तो पंखों से उड़ जाएगा, अपनी रक्षा करना जानता है। तो एक जानवर को, एक पक्षी को भी इतनी अकल है कि जब चाहो एक सेकेंड में न्यारा हो जाओ, अपने अंगों को समेट लो, उड़ जाओ। तो आत्मा भी क्या है, पंछी है ना, आत्मा क्या है, आत्मा आत्म पंछी। और दूसरा बाबा वैसे भी कहावत है कि पंछी और परदेसी किसी के भी मित्र नहीं होते हैं, पंछी और परदेसी किसी के मित्र नहीं होते। क्यों? आप पंछी को खूब दाना दो, अच्छे से सोने से पिंजरे में रख दो, सोने के अच्छा सा झूला दो, हीरे जड़त कर दो, वो झूले पर वो बैठे पिंजरे के अंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बना के उसको दो, लेकिन वो पिंजरे में तब तक रहेगा जब तक वो दरवाजा उसका बंद है। और भूल से भी अगर दरवाजा खुल गया, खुला तो क्या होगा, उसको पिंजरे का मोह है क्या, उसको तो आकाश चाहिए, वही उसका बसेरा है, वही उसका आशियाना है। तो इसीलिए आत्मा भी क्या है, पंछी है, एक सेकेंड में न्यारी हो सकती है, लेकिन पिंजरे के पंछी बन गए हैं हम। पिंजरे के पंछी में ना दे अभिमान में आ गए हैं, भूल गए हैं हम अपने असली स्वरूप को। इसलिए देखो बाबा कहते हैं, मैं ही आकर के बच्चों को देही अभिमानी बना सकता हूँ। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी को आत्मा का ज्ञान दे सके और देही अभिमानी बना सके। सब देह अभिमानी बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा स्वयं विदेही है, वो सदा ही उनको आत्मिक स्मृति है, तो वो ही हमको ये बना सकते हैं। और यही हमारा पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। शुरू से लेकर के बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया है और बाबा कहते अंत तक भी यही ज्ञान चलेगा। कई कहते हैं ना, बाबा की मुरली तो वही होती है, आत्मा आप समझो, बाबा को याद करो, बस और क्या है। पर यही जरूरी है, यही पक्का नहीं हुआ है। हुआ है प्रकाश पूरा? हाँ हुआ है, नहीं हाँ? बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं, बार बार कई आकर्षणों में आ जाते हैं, क्योंकि अगर वे आत्मिक आत्माभिमानी स्थिति होती तो कितनी बातों से बच जाते होते। पर ये आकर्षण जो है ये देह अभिमान की निशानी है। ये आकर्षण आत्मा को भूलने की निशानी है, घर को भूलने की निशानी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। और ये पहला पाठ सो अंतिम पाठ, क्योंकि अंत का पेपर भी यही होगा। कौन सा होगा अंत का पेपर? जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, एक सेकेंड में अशरीरी बन सको, न्यारे बन सको, उस समय और कोई याद न आए। जब कर्मातीत बाबा कहते हैं, आज बाबा का वरदान था, कर्म बंधन मुरली में था, कर्म बंधन कर्म संबंध, पर दोनों के बीच की स्थिति का नाम क्या है? कर्मातीत। तो कर्म बंधन से कर्म संबंध में जाना है। अभी यह सब कर्म बंधन, जितने भी हिसाब किताब हैं संबंधों के, ये सब बंधन का रूप है, क्योंकि ये सब कर्मों अनुसार है ये हिसाब किताब। इसीलिए ये, क्योंकि पाप कर्म किए हुए हैं 63 जन्म, इसलिए वो धीरे धीरे वो कर्म बंधन बनते गए हैं, वो खींचते हैं, चाहे खुशी भी देते हैं चाहे दुख भी देते हैं, पर वो खुशी भी अल्पकाल की तो है और क्या है। आज खुशी देंगे कल गम देंगे, आज प्यार करेंगे कल गालियां देंगे, है ना? आज कुछ मदद करेंगे कल ठोकर लगाएंगे। तो इसलिए ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। तो कर्मों का हिसाब किताब माना बंधन, और सतयुग में होगा कर्मों का संबंध। तो संगम युग पर ये कर्म संबंध की नींव हम रखते हैं, और ये नींव क्या है? सबको उस आत्मिक दृष्टि से देखना, ये उसकी नींव है। सब बाबा के बच्चे हैं, ये नींव है जिसमें आत्मा और परमात्मा, ये नींव है, फाउंडेशन है कर्म संबंध की नींव। तो जब ये नींव हम संगम पर डालते हैं, अभी नहीं कर्म संबंध बनाने हैं, अभी कोई संबंध नहीं बनाना है, जो है वो केवल पुराने है वो निभाने हैं, कुछ नया नहीं बनाना है। कई ऐसे किसी ने हंसी में हमको कहा कि बहन जी, बाबा कहते हैं कर्म संबंध होंगे सतयुग में, तो हम यहाँ वो संबंध बना सकते हैं? तो मैं तो पहले समझी नहीं क्या मतलब, क्या कह रहा है वो। कहता है जैसे फलानी मेरी युगल होगी सतयुग में, फलाना मेरा बेटा होगा सतयुग में, फलानी मेरी बेटी होगी, फलानी मेरी माँ होगी, हम ये संबंध यहाँ तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या समझते हो? मैंने कहा ये कौन सी तुम नई बात सुना है बना, ऐसी क्या विचित्र बात सुना, यहाँ कैसे संबंध बनाएंगे, यहाँ तो है ही सब बंधन। समझो मैं इसको कहूंगी ये तुम सतयुग में मेरी माँ बनना, ऐसे होगा क्या? तो उस समय देखो मुझे याद आया ब्रह्मा बाबा और ममा। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार सबको होता था, ये नारायण बनेगा बाबा, बाप दादा भी शिव बाबा भी कहते थे ये फर्स्ट श्री नारायण। बाबा को भी नशा था, मैं श्री नारायण बनूंगा, मैं श्री कृष्ण, नशा था। हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा श्री कृष्ण का फोटो देखते थे, इतनी खुशी में नाचते थे। बाबा का बॉडी लैंग्वेज बहुत सुंदर था, तो बाबा कृष्ण को देख करके वो बाबा कहते ना ये जो है ना कंधा हिलाते थे, इसको बाबा कहते थे क्या शब्द बाबा देते हैं, खगिया मारना, खगिया, मैं ये बनूंगा, ऐसे से बाबा करते थे, मैं ये बनूंगा। सब इतना हंसते, इतना खुशी होती थी, बाबा का बॉडी लैंग्वेज बहुत सुंदर था, तो मैं ये बनूंगा। अब मम्मा बिल्कुल इनका ऑपोजिट थी, बिल्कुल शांत रहती थी, कोई चेहरे पर वो एक्सप्रेशन भी नहीं, मुस्कुराती थी बहुत प्यार से, लेकिन वो एक्सप्रेशन जो जैसे बाबा की बॉडी लैंग्वेज थी ना, मम्मा की उस रूप से नहीं थी। लेकिन देखो कैसे मम्मा के लिए ये भी शिव बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी बनेगी, मानो सतयुग में ये जोड़ा बनेंगे, युगल बनेंगे, पर संगम पर तो ये बाप बेटी है ना। अब उस समय मम्मा ऐसे सोचेगी कि ये मेरा युगल बनेगा, या बाबा ऐसे सोचेंगे कि ये मेरी युगल बनेगी, नहीं, या कोई लौकिक में भी माँ बेटी थी, बाबा ने वो भी संबंध सब खत्म कर दिए, मम्मा और मम्मा की लौकिक माँ दोनों ही समर्पित हुए। लेकिन जैसे सब मम्मा को मम्मा कहते थे, वैसे मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, माँ अपने बेटी को कहे माँ। बाबा के लिए जगदम्बा मम्मा बेटी थी, लेकिन बाबा भी उनको मम्मा कहते थे। ये भी सिखाना होता है बच्चों को, हाँ जैसे कई बार होता है ना बच्चे को माँ सिखाएगी हाँ पापा पापा, तो माँ भी पापा ही कहेगी, हाँ तो क्या है वो बच्चा भी वही सीख जाता है, जो मम्मा अपने मुख से शब्द निकालेगी वही बच्चा सीख जाएगा। तो बच्चे को सिखाने के लिए माँ भी वही नाम बताएगी, वही वैसे ही कहेगी। अगर वो पति का नाम लेवे तो बेटा भी बच्चा भी अपने डैडी का नाम ही लेगा, क्योंकि मम्मा मम्मी तो वही कहती है, तो इसीलिए वो सिखाएगी तो खुद भी अपने मुख से ऐसे ही कहेगी। तो ये लौकिक संबंध यहाँ चलते ही नहीं है, बाबा की लौकिक युगल, युगल इतने साल साथ में रहे, बच्चे पैदा किए, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई संबंध एकदम बाबा के लिए, वो भी बच्ची थी, बाबा उनको कहते थे हाँ हाँ बच्ची, सोचो। और बाबा की युगल, बाबा को कहे बाबा, दृष्टि सारी बदल गई, एकदम बदल गई। तो देखो शिव बाबा ने कैसे कमाल कर दिया, और उसके पीछे आधार क्या था, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। कई लोग कहते हैं ना आप लोग आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, सारा दिन आत्मा परमात्मा ही करते रहते हो। हम कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करने का आधार ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि अगर ये ज्ञान नहीं है और देह अभिमान है, तो देह अभिमान में मैं और मेरा आएगा, ये मैं मेरा पाप कर्म की जड़ है, पाप कर्म का आधार ही है मैं और मेरा। जो बाबा कहते हैं पहला दरवाजा पाप का है मैं, और दूसरा दरवाजा है मेरा। तो बाबा कहते हैं मैं मेरा, चलो बहुत आदत है कहने की मैं और मेरा, तो खाली थोड़ा परिवर्तन कर दो, मैं फलाने की बजाय मैं आत्मा, और मेरा 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 कहने की आदत बहुत है, ये मेरा मेरा है, तो मेरा बाबा।
बस मैं आत्मा मेरा बाबा ये कहा, आपका कर्म बदल जाएगा, आपका वचन बदल जाएगा, आपका आपकी सोच बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। बस ये परिवर्तन लाना है और इसी के आधार से ही कर्मातीत बन सकते हैं, नहीं तो कर्म बंधन खत्म नहीं होंगे। तो कर्मातीत का मतलब ये भी नहीं है, कई कहते कर्मातीत माना क्या, कर्म छोड़ देना। कर्मातीत का मतलब ये नहीं है कि कर्म ही नहीं करना है। कर्मातीत का मतलब है कर्म भी किया पर उस कर्म का प्रभाव नहीं आया। कर्म किया खत्म, कहा जाता ना जैसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अब नेकी करने के बाद कितना सोच चलता है, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने ये किया, मैंने इतना अच्छा किया और किसने मेरी प्रशंसा ही नहीं की, मैंने इतना अच्छा भाषण किया और किसी ने मेरी महिमा ही नहीं की कि इतना अच्छा भाषण किया, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया किसी ने ये कहा ही नहीं कि आपने आज खाना बहुत अच्छा बनाया। तो कई अपनी प्रशंसा की डिमांड कैसे करते हैं, भोजन खिलाएंगे तो पूछेंगे अच्छी बनी है सब्जी अच्छी बनी है, आप कहेंगे बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी, माना वो अपनी प्रशंसा कान से सुनना चाहते हैं। अच्छा फिर पूछे किसने बनाई, हाँ मैंने बनाई, अच्छा आपने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई, वो खुश हो जाएंगे अपनी प्रशंसा सुनने। पर नेकी कर दरिया में डाल माना प्रशंसा के कान नहीं है, मेरी प्रशंसा कोई करे तब मैं खुश हूँ, और किसने मुझे कह दिया नहीं 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 अच्छी थी बनाई तो मेरी सारी अवस्था ही डाउन हो गई तो अवस्था कैसी हो गई फिर, तो जैसे फुगा होता है ना बलून, हवा भर दी बड़ा सुंदर दिखा और सुई लगाई तो सारी हवा निकल गई, उसकी सारी सुंदरता खत्म। तो प्रशंसा चाहना, महिमा चाहना, ये सब इच्छाएं बाबा कहते कभी अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए इच्छा के बदले क्या करो, क्या सोचो, अच्छा बनना, अच्छा बनना। तो इसीलिए कर्मातीत का मतलब क्या है, वो कर्म जो किया उसका प्रभाव मन पर नहीं आए। हम तो दादी जानकी को देखते हैं, जो दादी जैसे कहते हैं ना पिछली घड़ी क्या हुई, क्या बात हुई, एक सेकंड में भूल गए, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है अभी क्या मैंने आज खाया, जरूरत है क्या सोचने की ये मैंने खाया, कल क्या खाया, परसों क्या खाया, सारा दिन यही बैठ के सोचना है क्या क्या खाया, अरे बनाना तो नहीं आता, खाया क्या खाया वही सोच रहे तो इसीलिए उसकी जरूरत ही नहीं है। तो दादी जानकी का मैं एक मिसाल दूं सचमुच, तो क्या हुआ जब दादी जानकी पहली बार यूनाइटेड नेशंस में, दादी का 3 मिनट का भाषण था, दादी ने वो पढ़ के सुनाया था इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस के वो असेंबली में या कहां, तो दादी को कहा कि 3 मिनट आपको देंगे। अब वो कहा इंग्लिश में सुना, अभी इंग्लिश में दादी बोले मना कहां इंग्लिश, तो उनको लिख के दिया था, तो पढ़ तो लेती थी दादी, दादी तो मुरली भी पढ़ती इंग्लिश में, अगर दादी को इंग्लिश मुरली तो इंग्लिश मुरली पढ़ती है, कई बार विदेशों में तो दादी इंग्लिश मुरली कितनी बार पढ़ी। तो वो यूनाइटेड नेशंस में दादी को जो इंग्लिश दिया था लेक्चर तैयार करके दिया था, और वो दादी ने 3 मिनट में, 3 मिनट का लेक्चर था और बहुत ही शक्ति रूप में वो पढ़ के सुनाया, तो बहुत वाहवाह हुई थी, बहुत अच्छा हुआ था। तो जब मधुबन में आई दादी, तो ऐसे ही मैंने अनायास ही दादी से पूछा, दादी आपने यूनाइटेड नेशंस में जो भाषण किया, दादी वो थोड़ा अनुभव सुनाओ ना। दादी कहती कहाँ भाषण किया, कहाँ किया, दादी आपने वहाँ किया इतना इतना, वो वर्ल्ड न्यूज बन गई, ब्राह्मण की, ब्राह्मणों की दुनिया में न्यूज बन गई ना इतनी बड़ी कि दादी जानकी ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण किया। तो दादी कहती मैं तो भूल ही गई यानी इतनी बड़ी चीज, नहीं तो कोई अगर जाए तो क्या वर्णन करे, मैंने किया ये किया ये किया ये किया, पर एक बार भी दादी ने वर्णन नहीं किया। दादी को पूछते थे दादी आप इतनी सेवा करके कुछ सेवा का समाचार सुनाओ, दादी को तो कहती मेरे को आता ही नहीं है, सेवा समाचार क्या सुनाओ, मुझे तो बाबा का ज्ञान देना ही आता है ये किया ये किया ये किया, ये भी तो अभिमान हो गया ना, मैंने ये किया, मैंने ये सेवा की, मैंने इसको समझाया, मैंने ये किया। कई बार बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा तो कहते थे, भले मुरली में आता है बाबा कहते हैं, बच्चे उस दिन भी था एग्जीबिशन, बच्चे समझाते हैं, लोग पूछते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं वो लिखते नहीं है, प्रश्न लिखते हैं कि ये प्रश्न हम बाबा हमसे पूछते हैं, पर बच्चों ने क्या जवाब दिया ये नहीं लिखते। फिर बाबा ने मुरली में बताया कि क्या जवाब दो। खैर, तो एक बहन थी, वो उसने बाबा को सब कुछ पत्र में लिखा, बाबा ऐसे आते एग्जीबिशन में, ऐसे आते बाबा, ये सेवा हुई, ये सेवा होती है, फलाने आए फलाने आए, सारा पत्र लंबा चौड़ा लिख दिया। तो बाबा को लिखा, अच्छा जब बाबा के पास आई, थोड़ा सोचा मैं बाबा को फिर से वो समाचार सुनाऊं, तो बाबा के सामने आई और बाबा को खूब बड़ा चढ़ा के फिर सुना रही है। अब बाबा देख रहे थे, ये थोड़ा अभिमान चढ़ गया, तो बाबा ने उनसे, अभी उसको सीधा तो नहीं कहेंगे ना कि बस बस हाँ मैं, तो बाबा ने उसको बड़े प्यार से कहा, बच्ची ये तुमने पत्र में भी लिखा था ना? हाँ बाबा मैंने पत्र में लिखा था, मैंने ये भी लिखा था ये। नानी का बाबा जानते, बाबा जानते हैं, माना पूरा करो, बस बस जरूरत नहीं है ज्यादा बोलने की, क्योंकि अपनी तारीफ, अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा, तो ये तो अभिमान हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये मैं मेरा को खत्म करो। ये कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या है? कर्म बंधन से परे, लेकिन वो कर्म का प्रभाव भी हमारे ऊपर ना आए, ताकि जो बाबा कहते हैं वो अंतिम जो पेपर होगा, एक सेकंड का पेपर होगा, और उस एक सेकंड में क्या याद आएगा, क्योंकि अचानक होगा, बाबा ने ये भी कह दिया है, अचानक होगा, और उस अचानक के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा, और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि कभी भी आ सकता है, इसलिए सदा तैयार रहना है, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई एग्जामिनेशन होता है ना, तो एग्जामिनेशन के लिए समय मुकरर होता है कि फलाने दिन पर, फलानी जगह, फलानी तारीख, फलाने स्थान, फलाने समय, ये आपकी आपका एग्जामिनेशन पेपर आए, पेपर है, वहाँ जाना है और पेपर देना है, और उसके लिए स्टडी करते हैं। एक मास पड़ा है तो चलो 10 दिन की बात करेंगे, 20 दिन की बात करेंगे, अभी तो एक मास है, चलो फिर लास्ट के 2-4 दिन खूब पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशन देने जाना है। अब ये तो दुनिया में तो ये एग्जाम होते हैं, परंतु वो सब फिक्स होता है, पता होता है कब कहाँ ये होगा एग्जाम, ये सब मालूम है, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या आएगा ये पता नहीं होता है, बाकी सब पता होता है। और यहाँ उसका उल्टा है, उल्टा क्या है, हैं? हाँ, यहाँ क्वेश्चन पेपर पता है, क्वेश्चन पेपर क्या है, एक सेकंड का पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक सेकंड में आत्मा ऐसे न्यारी हो जाए, कुछ भी बंधन न खींचे, कोई चीज याद ना आए, बस सिवाय बाबा के, ये एक सेकंड का पेपर है, बस अंत मते सो गति, ये स्थिति बनानी है, वही स्थिति होगी, अंतमति क्या हमारी स्थिति है, वही गति होगी, पर उस अंतमति वो कब आएगी, कहाँ आएगी, किस रूप में आएगी, ये पता है, क्योंकि कदम कदम पर पेपर तो वैसे ही हो रहे हैं, तो कदम कदम पर भी पेपर हैं, और उस कदम कदम के पेपर में भी पास होना है। जब ये कदम कदम के पेपर में पास होंगे, तब वो अंत के पेपर में भी पास हो सके, तब वो पेपर आउट है, वो क्वेश्चन आउट है, लेकिन वो कब होना है वो पता नहीं है, पर इन सब का आधार होगा, जैसे फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स केवल वो फाइनल की नहीं सेट होती है, लेकिन जो बीच बीच में 3 मास, 6 मास, 9 मास, वो भी जो एग्जाम्स होते हैं वो भी जुड़ती है, तो ये सब भी आधार तो बनेंगे। इसीलिए हर वक्त मम्मा हमेशा कहती थी, मम्मा से जब पूछते थे मम्मा क्या विशेष पुरुषार्थ करें, तो मम्मा उनको कहती थी हर वक्त समझो मेरी अंतिम घड़ी है। ऐसे समझ सकते हैं, हर वक्त मेरी ये सोचो मेरी अंतिम घड़ी है, अभी अगर शरीर छूटे तो कौन याद आएगा कौन याद आएगा, धंधा याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, फलाना याद आएगा, ये याद आएगा। एक बार बाबा ने मुरली में बड़ी सुंदर बात कही थी कि वो जब लौकिक में थे, भक्त थे, तो उनके गुरु ने कहा कि अंत में केवल नारायण ही याद आए, और कहानी सुनाई थी उसको, वो अजामेल की कहानी आती है ना, तो अजामेल की कहानी में आता है, तो बड़ा पापी था, बहुत पापी था, बहुत उसने पाप किए थे, अजामेल जैसा पापी, तो लेकिन उसको ये मालूम था कि अंत में अगर भगवान का नाम लेंगे तो पार हो जाएंगे, तो उसने क्या किया, अपने बेटे का ही नाम नारायण रखा था। अजामेल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तो जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो नारायण कहा, याद किया अपने बेटे को, लेकिन नारायण को लगा कि मुझे याद कर रहा है, भगवान को लगा कि मुझे याद कर रहा है, और उसका अजामेल का उद्धार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। अब ये कहानी बाबा ने लौकिक में सुनी थी, और बाबा को बेटा पैदा हुआ था, वो नारायण जो है ना बाबा का लौकिक बेटा, वो तो सबसे छोटा था बेटा, तो इसीलिए बाबा ने उसका नाम नारायण ही रख दिया कि अगर मैं शरीर छोड़ूं तो कम से कम ये नारायण याद आएगा तो भगवान राजी हो जाएगा। इसीलिए अजामेल की कहानी के आधार से बेटे का नाम बाबा ने नारायण रखा था। तो अंत मति सो गति, ये भी बाबा को बहुत था बुद्धि में, परंतु एक युक्ति थी, भाई बेटे का नाम नारायण रख दो, अंत में तो बेटा याद आता है ना, हाय मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा, जब तक वो बेटा सामने ना आए तब तक प्राण नहीं निकलते तन से, कईयों के इतना मोह होता है बेटे में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था से पहले सब कर्म बंधन से परे बस ये स्थिति बनानी है, तो ये हमारा उद्देश्य है, बाप समान बनना। अंत में देखो ब्रह्मा बाबा कैसे हिस्ट्री बाबा के कमरे में, और कोई बाबा को याद नहीं था, बस बाबा से जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा से पूछा गया, गुलजार दादी जब वतन में गई बाबा से पूछा कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति कैसी थी, तो बाबा ने उस समय कहा कि तीन प्रकार की खींच थी अंत के समय, एक तरफ शिव बाबा की याद थी, शिव बाबा मुझे बुला रहे हैं, बस शिव बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि बाबा जैसे शरीर छोड़ रहे न्यारे हो रहे हैं, तो एक तरफ शिव बाबा की खींच थी, दूसरे तरफ अव्यक्त बाप दादा, क्योंकि बाबा को पता था कि ये संपूर्ण बन के ये बनेगा, यानी अव्यक्त बाबा की मुरली में कई बार आता है ये संपूर्ण बन के ये बनेगा, तो ये बाबा को पक्का था कि ये संपूर्ण बन के ये बनेगा। और तीसरी खींच थी जैसे वो संपूर्ण ब्रह्मा और शिव बाबा उनको कह रहे बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, हाँ बच्चे आ जाओ, अब बेहद सेवा में लगना है, विश्व सेवा में लगना है। और तीसरी तरफ शरीर का अंतिम हिसाब किताब, क्योंकि हार्ट फेल था, हाँ सवेरे से बाबा को हार्ट का प्रॉब्लम, मतलब दर्द तो था, सवेरे बहुत ठंडी थी, 18 जनवरी का दिन, ठंडी बहुत थी, तो दादी प्रकाशमणि जी मधुबन में थी, वो बाबा ने रोका था उनको, वो बॉम्बे में रहती थी, बॉम्बे जा रही थी वापस 17 को, बाबा ने उनको रोका, बड़ी दीदी जी इलाहाबाद गए हुए थे कुंभ मेले में, तो बाबा ने दादी जी को रोका था। तो सवेरे दादी जैसे बाबा के कमरे में गुड मॉर्निंग करने गई, तो देखा बाबा को चेस्ट पेन है, तो बाबा को कहा, और ठंडी बहुत बाहर, तो बाबा को दादी ने कहा बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा ने कहा नहीं। फिर भी मना बाबा पर बिल्कुल बाबा न्यारे हो रहे, न्यारे एकदम शांत। फिर बाबा ने दादी ने बाबा को कहा बाबा आज आप बाहर मत निकले, बहुत ठंडी है बाहर, कमरे में तो थोड़ी गर्माइश होती है। वो उस समय कांगड़ी जलाते थे, वो अब ये हीटर वीटर तो थे नहीं, वो क्या आप कहते हैं उसको, नहीं कोयला सिगड़ी, वो कांगड़ी नहीं, वो जैसे कश्मीर में हिमाचल में कांगड़ी जलाते हैं तो उस वो गर्माइश थोड़ी रहती है, वो जलाते थे। और बाबा गोदरी पहन के आते थे, वो राजस्थानी वो रजाई होती ना पतली, वो काफी गर्म होती है, तो वो ओढ़ के बाबा आते थे। और बाबा कई बार मुरली में कहते हैं गोदरी में करतार, तो गोदरी में करतार माना शिव बाबा इस तन में, और गोदरी ओढ़ करके बाबा क्लास में आते थे। तो ठंडी तो बहुत थी, तो दादी ने बाबा को कहा बाबा आज आप आप मत निकले कमरे से बाहर, मैं ही जा करके योग कराती हूँ और आपकी तरफ से कुछ कह के कुछ मैं क्लास करा लूंगी। तो बाबा ने कहा ठीक है, क्योंकि पेन तो था। फिर थोड़ा दिन हुआ, सूरज आया निकला, तो बाबा ऑफिस में गए, बाबा ने सब पत्रों के जवाब दिए। अभी ये आया था ना एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, गुजरात का गवर्नर आया था, तो गुजरात का गवर्नर खास ये पांडव भवन देखने आया था, तो उसने मेरे से प्रश्न किया, मैंने उसको पांडव भवन दिखाया, तो मेरे से प्रश्न किया कि क्या बाबा को पता चला, क्योंकि बाबा के कमरे में जब गए ना तो मैंने ऐसे बताया कि दादी जी उनके सामने थे आदि, तो क्या बाबा को पता चला कि आज बाबा जैसे छुट्टी लेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल बाबा को पता चला, क्योंकि सवेरे, क्योंकि डॉक्टर के लिए मना किया, नहीं तो भाई डॉक्टर को बुलाओ कोई, और उस समय अपने बाबा के बच्चे तो डॉक्टर थे नहीं, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाते थे या कोई प्राइवेट डॉक्टर्स थे उनको बुलाते थे, तो बाबा ने बिल्कुल मना किया। फिर ऑफिस में गए, सब पत्रों के जवाब दिए, बाबा ने एक भी पत्र छोड़ा नहीं। फिर दादी प्रकाशमणि जी को बुलाया और दादी जी को सारा मधुबन के स्टोर रूम्स दिखाए, जहाँ पर सामान रहता है, कपड़ा का, अनाज का, बर्तन का, ये सब स्टोर है, तो वो दिखाया, जैसे आज ही बाबा हैंडओवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोपहर को 4 बजे वो 3 बजे पोस्ट आती थी सेकेंड टर्न, उस समय तो लेटर्स बहुत आते थे ना, ये ईमेल फैक्स वैक्स तो कुछ था ही नहीं, टेलीग्राम्स भी आते थे। तो बाबा फिर गए ऑफिस में, बच्ची सब पत्रों का जवाब देना है, तो यीशु दादी ने कहा बाबा शनिवार है, कल संडे है, तो कल जवाब देंगे, अभी जरूरत क्या है बाबा, आप थोड़ा रेस्ट करें। बाबा ने कहा नहीं, सब जवाब देना है। फिर उसके बाद शाम को 7:30 बजे भोजन की बजाय 6:30 बजे भोजन रख दिया, और फिर बाबा लास्ट में मुरली भी चलाने गए हिस्ट्री हॉल में, और लास्ट में बाबा ने मुरली चलाकर जो 3 शब्द कहे बच्चे, निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनना, अच्छा बच्चों से छुट्टी। छुट्टी बाबा कभी नहीं कहते थे, हमेशा नमस्ते गुड नाइट, पर छुट्टी ये बाबा ने दरवाजे पर कही, और बाबा कमरे में आए। तो कैसे लास्ट में, तो बाबा ने जो संदेश में कहा, तो लास्ट का जैसे ये अंतिम हिसाब किताब शरीर का चुप्त हो रहा है, बाबा न्यारे हो रहे हैं, शिव बाबा बुला रहा है, अव्यक्त ब्रह्मा का जो संपूर्ण रूप वो बुला रहा है कि बाबा का साथी बनना है। और दादी जी को टचिंग आई, जैसे शिव बाबा की टचिंग आई, बाबा ने किसी को याद नहीं किया, पर टचिंग आई दादी को कि मैं जाऊंगी, तो रात को जाती नहीं थी दादी, रात को बाबा 9:30 बजे मुरली पूरी करते थे और वापस आ जाते थे, लच्छू बहन वगैरह वो जो बाबा के साथ में भी होते, दादी नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन 9:45 बजे थे और दादी को संकल्प है मैं जाऊं। तो जैसे बाबा के कमरे में गई तो बाबा बैठे हैं खटिया पर और आंखें बंद ऐसे करके, और दादी गई बाबा 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 का ध्यान खिंचवाने लिए हाथ पकड़ा, और बाबा ने आंखें खोली, बस दृष्टि और हाथ, जैसे बाबा कहते ना मुरली में विल कर दी, सारी शक्तियां विल कर दी और अंतिम तीन महावाक्य उच्चारण किए, निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनना है। तो ये मानो कैसे बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, संपूर्ण बने, सब बंधनों से मुक्त हो गए, जैसे आज ही न्यारे हो रहे हैं सब। वो पता जैसे संकेत तो बहुत मिले, तो यही संकेत बाबा कहते हैं हाँ मिले, ये बड़ी बात थी। तो इसलिए हमको भी क्या समझना है, करना सब कुछ है, फंसना कहीं नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। अंत तक बाबा ने सेवा की, ये नहीं कि सेवा नहीं करनी है, सेवा अंत तक की। कोई सोचे कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है चलो नहीं करें, पर शिव बाबा की मदद थी तो सेवा भी पूरी और तपस्या भी पूरी, साथ साथ दादी जी को भी इनडायरेक्टली सब जैसे हैंडओवर किया और बाबा का जो कहना भी वो भी एक सेकंड में मान लिया जी बाबा, और बाबा शिव बाबा का साथी बन गया। तो यही कर्मातीत अवस्था। अब कर्मातीत अवस्था के बाद कर्म संबंध तो अपने आप ही बनेंगे, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होगी प्रारब्ध उसी अनुसार बनेगी, जो कुछ हमने पुरुषार्थ किया होगा वही बनेगा, तो वो हमारा अंतिम उद्देश्य है। पर इस भट्टी का लक्ष्य क्या है, ये तीन दिन बिल्कुल इसी लक्ष्य के अनुसार आप तीन दिन बनाना, कैसे मैं सब बंधनों से मुक्त हो रही और कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी करना नहीं, ना खाना बनाना, ना दफ्तर जाना, ना दुकान जाना, है क्या जरूरत है क्या, कपड़े भी इतने लाए होंगे ना कि धोना भी ना पड़े, कि धोना पड़ेगा जरूरत ही नहीं। बस सवेरे 4 बजे से बिल्कुल और मौन एकदम, अगर हाँ जरूरी कोई बातचीत है तो कोई बात नहीं, 10 शब्द की बजाय 2 शब्द, परंतु जितना हो सके मोबाइल फोन्स जो आपके खिलौने हैं ना आपके पर्स में आपके जेब में वो सब स्विच ऑफ कर दिए, घर में बता दो मुझे अभी 3 दिन कोई फोन ना करे, कि फोन करेंगे आपको घर, अब तो हर एक के हाथ में है फोन, कभी भी किसी को कोई भी कहाँ भी कर लेगा तो इसीलिए आप पहले से इन्फॉर्म कर दो। और हमारी यहाँ कुमारियों के नीचे ट्रेनिंग हुई ना तो सबके मोबाइल उठा लिए मोबाइल, ये कुमारियां भी बहुत मोबाइल, सारा दिन मोबाइल लेके बैठती है, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, पता नहीं क्या क्या मोबाइल्स में आ गया है, सब बंद, सबके मोबाइल उठा लिए, बेचारे माँ बाप वहाँ थोड़ा परेशान बच्चियों से बात करना है लेकिन फिर वो दूसरों के थ्रू करवाते हैं, लेकिन वो कहे नहीं मेरे से कोई बात नहीं करे, बस मैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में ये कह सकते हो 3 दिन अभी कोई हमको फोन ना करे, ये हो सकता है कि फोन आते रहेंगे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बजे, परंतु चलो कोई जरूरी है कोई बात नहीं, परंतु आप उनको कह दो कि 3 दिन के बाद तो वापस आ ही रहे हैं, 5वें दिन तो हम पहुंच ही जाएंगे। हाँ आज क्या है, कौन सा दिन है आप, आज तारीख क्या है, 24 22 को तो निकले होंगे, कोई 21 को निकले, कोई कल पहुंचे, और 23 24 25 26 27 को तो जाना ही है ना, 27 को जाना है 28 को, 27 28 को तो पहुंच ही जाएंगे, दिल्ली तो बहुत नजदीक है, तो उनको कहो 28 तारीख में पहुंच रही हूँ प्लीज मुझे कोई फोन ना करे, बस कुछ भी 28 तारीख के बाद, ये बता सकते हैं फोन करके, कोई फोन ना करे, देखो ये आपके लिए परीक्षा होगी। और मौन रहना, सवेरे 4 से 8 बजे तक तो पूरा ही मौन, ये आप सबसे निवेदन रहेगा, 8 के बाद चलो थोड़ा, पर वो भी जितना हो सके साइलेंस में रहो, ये पहला ये लक्ष्य है। और अपना समय श्वास संकल्प शक्ति सब कुछ सफल करना है, कुछ भी व्यर्थ न जाए, ये लक्ष्य है। और उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, क्या बनना है, कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, अंत मते सो गते ये बुद्धि में रखना है, घर जाना है, संपन्न बनना है, बस यही बुद्धि में रखो, ठीक है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी तो इनको ये सब बताना, दो तीन बातें, बिजली, पानी, चप्पल थोड़ा लाइन में रखे, और जब चार धाम की यात्रा करते हैं तो एक ही जगह चप्पल नहीं उठाए, कहीं पे एक ही जगह उतार देते हैं, फिर नंगे पैर चलते हैं, तो चद्दर गंदी होती है, जहाँ जाना है वहीं बाहर चप्पल उतार और लाइन में रखे, ये चार बातें। ठीक है, अभी पहले हम तीन मिनट आ गए।
मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
आदरणीय शिलू बहन को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू शिलू बहन। और हम अब आवाहन करते हैं हमारे मधुरवाणी ग्रुप का, जो बाबा के बहुत सुंदर गीत और शब्दों से आप सबको वेलकम करने के लिए उत्सुक हैं। ये हमारी ईश्वरीय परिवार की बड़ी मीठी परंपरा है, जो हम अपने ही घर में आते हैं और अपने ही घर में जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो मधुबन घर है चाहे वो शांतिवन घर है, हमें आने की खुशी होती है, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ परिवार को वेलकम करने की खुशी होती है। ये भी एक बड़ा संगम युग का मीठा मधुर परिवार है। तो हमारे बीच में हमारे मधुरवाणी ग्रुप से बाबा के बहुत स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड जो हैं, सतीश भाई हमारे बीच में हैं। आपको बाबा से एक विशेष वरदान है, जो बड़ा सुंदर गीत लिखते भी खुद हैं और वो गीत को बहुत सुंदर स्वर भी खुद देते हैं। तो पहले हम रिक्वेस्ट करते हमारे सतीश भाई को कि आकर सभी दिल्ली निवासियों का इस मीठे मधुबन में स्वागत करें।
ओम शांति। भट्टी तो बहाना है, किसी तरह यहाँ आना है, और भाग्यवान ही होते हैं जो पांडव भवन में आप आते हैं। आप सब वही भाग्यशाली हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मधुबन में भट्टी करने शक्ति नगर है आया, भट्टी से शक्ति भरने शक्ति नगर है आया, बादल लाए घर के फिर जाकर के बरसेंगे, पांडव भवन में आकर मन मधुबन मुस्काया, मधुबन में भट्टी करने भट्टी नगर है आया, भट्टी से शक्ति भरने शक्ति नगर है आया। बादल आए घर के फिर जाकर के बरसेंगे, पांडव भवन में आकर मन मधुबन मुस्काया, मधुबन में भट्टी करने
शक्ति नगर हो आया, भक्ति तो शक्ति भर ले, शक्ति नगर हो आया। कर्म स्थली प्यारी जहाँ कर रही है पालना दीदी चक्रधारी, सेवा की हुई शुरुआत लिखा गया इतिहास, दिन वही दोहराने शक्ति नगर है आया, मधुबन में भट्टी करने शक्ति नगर है आया, भक्ति से शक्ति भर ले शक्ति नगर है आया, शक्ति नगर है आया।
आप ताली बजा सकते हैं अपना भ्रमण करें।
रही है धरती और आसमान थर्राया, आग बरसती दुनिया में सबका मन अकुलाया, सबको दे सकाश सब में धरती आकाश, सब दुनिया के दुख हर में शक्ति नगर है आया, मधुबन में भट्टी करने शक्ति नगर है आया, भट्टी से शक्ति भरने शक्ति नगर है आया, शक्ति नगर है आया। मधुबन का हर कण कण बाबा की याद दिलाए, मन भावन मधुबन में सहज योग लग जाए, अंतर्मुखी बन जाना है योग बल कमाना है, संगम सफल बनाने शक्ति नगर है आया, मधुबन में भट्टी करने शक्ति नगर है आया, भट्टी से शक्ति भरने शक्ति नगर है आया, शक्ति नगर है आया। बादल लाए भर के फिर जाकर के बरसेंगे, पांडव भवन में आकर मन सबका मुस्काया, मधुबन से भट्टी करने शक्ति नगर है आया, भट्टी से शक्ति भरने शक्ति नगर है आया, मधुबन में भट्टी करने शक्ति नगर है आया, शक्ति नगर है आया।
सतीश भाई का सभी को वेलकम करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद है। हम सभी विशेष ये तीन दिन इस तपस्या भूमि में हैं और ये हम सबका जैसे अभी अभी भी सुना बहुत बड़ा भाग्य है। आज से हम हमारी ये तीन दिन की मौन भट्टी की शुरुआत कर रहे हैं और भी लक्ष्य रखेंगे कि पूर्णतया हम सभी मौन में रहें। बहुत आवश्यकता पड़ी तो भी बहुत सॉफ्ट शब्दों में बहुत धीरे से हम एक दूसरे बात करें, हम सब मिलकर के एक ऐसा सुंदर अनुभव करें कि जैसे सूक्ष्म वतन ही नीचे उतर आया है। वैसे भी इस स्थान में बाहर के लोग बहुत कम आते हैं और कोई वाइब्रेशन यहाँ है नहीं। शुरू से तपस्या का ही वायुमंडल रहा है और हमें उसे यहाँ से अनुभव करके जाना है। हमारे बीच हमारी आदरणीय शशि बहन जी हैं, हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मोबाइल फोन को हम पूरी तरह स्विच ऑफ रखेंगे। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह भी बचता है तो ये भी आपस में उस समय एक डिस्टर्बेंस थोड़ी सी होती है, तो हम एक दो को भी इस तरह से सहयोग देंगे। आपकी दिनचर्या में दो समय में चार धाम की यात्रा का कार्यक्रम है। चार धाम हम सब जानते हैं, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, बाबा का शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल। जहां भी हम जाएंगे अपने चप्पल्स अपने साथ लेकर के जाएंगे और ये पूरा एक पाथ है कुटिया से लेकर के हिस्ट्री हॉल तक, जिस पाथ पर मैक्सिमम प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने ट्रैवल किया है, तो वो पाथ की जो एक वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन को बिल्कुल अंतर्मुखी होकर के हम फील करने का प्रयास करेंगे। समय पर योग और क्लास में हम पहुंचने का भी ध्यान रखें। अमृत वेले 4 से 5 मेडिटेशन हॉल में योग रहेगा, 6:30 से 7 ओम शांति भवन में योग होगा और 7 बजे मुरली क्लास शुरू होगा। आप सबसे अनुरोध है कि मुरली क्लास के समय फर्स्ट लाइन के जो सोफा है बहनों और भाई की तरफ, वो फर्स्ट लाइन के सोफा आप खाली छोड़ देंगे। कल का हमारा दिवस आत्मा अनुभूति दिवस होगा। हम विशेष आत्माभिमान स्थिति का अभ्यास करेंगे और हमारा स्वमान रहेगा, मैं आत्मा ज्ञान सूर्य हूँ। तो यही मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति हम अमृत वेले से अनुभव करने का प्रयास करेंगे। रात्रि को सोने से पहले हर एक लक्ष्य बनाएं कि बाबा के कमरे में थोड़ी सी देर बैठकर भी हम बाबा से गुड नाइट जरूर करेंगे। विशेषतः आज भोजन के बाद सोने से पहले हर एक बाबा के कमरे में जाकर ये 3 दिन में मुझे अपने में क्या परिवर्तन लाना है और क्या भर कर जाना है, अपने गोल्स को प्यारे बाबा के सामने बैठकर फाइनल करेंगे। और आप सबका भोजन, चाहे नाश्ता चाहे भोजन, ये व्यवस्था ऊपर के डाइनिंग हॉल में रहेगी। ओम शांति। बाकी हमारे बीच में आदरणीय शशि बहन है। हम सब जानते हैं कि पांडव भवन का अभी का जो कारोबार है निमित्त, आप यहाँ उस कारोबार को संभाल रही हैं, सुचारू रूप से ध्यान दे रही हैं और बाबा की इस तपस्या भूमि में वही वायुमंडल और वाइब्रेशन बना रहे, वो तपस्या का एक फाउंडेशन भी सूक्ष्म रूप से आपकी हाजिरी बना रही है। मैं आदरणीय शशि बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमें आज हमारी दादियों की ओर से, प्यारे बाबा की ओर से ब्लेसिंग्स देंगी और हमें बल भी भरेंगी। आदरणीय शशि बहन।
ओम शांति। प्यारे प्यारे बाबा की तपस्वी भूमि, श्रेष्ठ चरित्र की भूमि, बाबा की वरदानी भूमि, बाबा के साथ हमारे दादियों की भी तपस्वी भूमि, जिसमें शक्तिनगर के तथा उनसे कनेक्टेड सेवा केंद्र के भाई बहनों का मधुबन, बाप दादा, दादी जानकी और रतमन दादी, अन्य दादियाँ तथा एडवांस पार्टी के जो भी मम्मा, दीदी, दादी और जो भी विशेष रतन एडवांस पार्टी में गए हैं, उन सब के तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। क्योंकि आज के दिन से ताली बजाना बंद करेंगे, एक हाथ की ताली बजाएंगे, क्योंकि आज वतन से बाप दादा भी आप सबको देख करके ना जाने कितना मुस्कुरा रहे होंगे। तो जब कहा कि शक्ति नगर के भाई बहनों के लिए यहाँ भट्ठी रखी है, तो उस समय मैं सोचने लगी कि इनके लिए भट्ठी रखना भी एक बहुत नई बात है। शक्ति नगर जो कि पहले कमला नगर बेस था, जहाँ पर दीदी, बड़ी दीदी ने रह करके इतनी सेवा का फाउंडेशन मजबूत डाला और उसके साथ साथ अन्य दादियाँ, बाबा, मम्मा सब उसी स्थान पर आते रहे। और उसके बाद कुछ समय के बाद पांडव भवन, फिर शक्ति नगर, ये सब बना। तो आप सब ने तो ना जाने कितनी भट्ठियाँ की, कितनी पालना ली, बाप दादा के साथ साथ दादियों की विशेष पालना, बाबा का विशेष रथ। गुलजार दादी जी भी दिल्ली में रहते और शुरू में शक्ति नगर में काफी समय बिताया है, तो उस समय दादी जी ने भी आप सबको इतनी पालना दी है, इतना भरपूर किया है। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी, जो कि कदम कदम पर बाबा की शिक्षाओं की धारणा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन करके प्रेरणा देते रहे। तो आप सभी तो पहले से ही इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने कुछ प्राप्तियां की हुई हैं, खजाना तो इतना भरा पड़ा है, कभी कभी खजाना भरता है, कभी कभी खजाना ओवरफ्लो होता है। अभी आपका ओवरफ्लो हो रहा है या भरा है, भरे हुए में और भरेंगे या मधुबन में क्या करेंगे? खजाना तो बहुत है, पुराने पुराने बैठे हैं और इतनी पालना ली है। और वहां पर अभी चक्करधारी दीदी जो हर समय बाप दादा के साथ के ना जाने कितनी कहानियां सुनाती हैं, कितने अनुभव सुनाते हैं, वो हम भी सुनने कम सुने होते हैं। तो मैं सोच रही थी इतना सारा भरपूर है, फिर भी मधुबन में भट्ठी में आना, ये भी एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य इसमें समाया हुआ है। आप में से कई भाई बहने हैं जिन्होंने साकार बाबा को देखा होगा, है कोई जिसने देखा है? अभी नहीं, पुरानी माताएं यहाँ नहीं बैठी हैं। अच्छा, इसके बाद ऐसे भाई बहने बैठे हैं जिन्होंने बड़ी दादी की पालना ली है, हाथ खड़ा करो। और जिन्होंने बड़ी दीदी की पालना ली है, बड़ी दीदी को भी देखा है, बड़ी दीदी को देखा, मिस दादी को देखा, क्योंकि बड़ी दीदी भी वहां बहुत आती थी। और अभी तो कितनी पालना ली है गुलजार दादी से, गुलजार दादी वहां पर और आप यहाँ। आपको पता है गुलजार दादी दिल्ली में नहीं, 19 तारीख को दादी वहां पहुंच गई है दिल्ली में, और वहां पांडे भवन में उनका बहुत अच्छा स्वागत का प्रोग्राम रखा है। और बीच बीच में आप सबकी ORC में भी भट्ठी चलती रहती है, लेकिन मधुबन में आके भट्ठी करना इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि मधुबन एक ऐसा स्थान है जहां पर साकार बाबा ने खुद भी तपस्या की और उस तपस्या के आधार से ऐसे ऐसे विशेष रत्न निकाले और उन रत्नों ने बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए भारत तथा विश्व के अंदर अनेक सेवाएं की। हर एक दादी का जितना गुणगान करें उतना ही कम है। दादियों को देखते हैं तो बाबा सामने याद आता। बाबा ने दादियों को ऐसा वरदानी का मुकुट पहना दिया और उस मुकुट से वरदानों की लहरें हमारे ऊपर आती रहती है। और जगदीश भाई जी तो आप सबको इतना भरपूर किया और ये महीना भी उनका है और इतना भरपूर किया तो इतने सब कुछ प्राप्ति है। लेकिन जो हमने सुना, जो हमारी बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे करें, वो मधुबन श्रेष्ठ वरदानी बाप दादा की चरित्र भूमि, बाप दादा के स्नेह की भूमि में हम यहाँ पर कर सकते हैं। और ये मधुबन तो हम सब बच्चों का अपना घर है, लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा कि आगे चलकर के इतने बच्चे हो जाएंगे, बस ये स्थान जो है दर्शनीय स्थल, लेकिन दर्शनीय स्थल के साथ साथ जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उस दर्शनीय स्थल से ना जाने कितने वरदानों को प्राप्त कर लेंगे। वो समय था जहाँ मधुबन में बाबा दादियाँ और थोड़े से बच्चे होते थे, फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी दीदी और सारे महारथी दादियाँ यहाँ पर और अव्यक्त बाप दादा के पदरामणि यहाँ पर और थोड़े थोड़े ग्रुप यहाँ पर आते थे, दादियों के साथ आंगन में चलते थे, बाबा के साथ का अनुभव करते थे। वो समय से लेकर के हम बहुत कुछ प्राप्तियां करते चले आ रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा आगे चल करके बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बनेंगे, बहुत मकान बनेंगे, तो अभी वो देख रहे हैं ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, अब शांतिवन के आसपास भी बनता ही जा रहा है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन मधुबन में ये भट्टी करने का मौका मिलना ये कोई कम बात नहीं है। आते हैं दर्शन करने के लिए और आपको ऐसे स्थान पर बैठने के लिए मौका मिले, ऐसे स्थान पर बैठ करके वो अनुभव करने का मौका मिले। कभी कभी हम माताओं से या भाइयों से सुनते हैं, जब जब कभी बड़ों के अनुभव सुनते हैं ना, कहते हम ड्रामा में बाद में क्यों आए, हमने साकार बाबा को क्यों नहीं देखा, हमने मम्मा को क्यों नहीं देखा, हमने हम देरी से क्यों आए, बाबा से पता नहीं कितने उलहने देते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा सब उलहनों को पूरा करता। ये भट्टी में आना मीन्स ये उलहना खत्म। हमने बाबा को क्यों नहीं देखा, वो भट्टी में आप अनुभव करेंगे कि बाबा आपके सामने हैं, बाबा वरदान देना है, बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं, बाबा हमारी बैकबोन है, लेकिन जरा सा बुद्धि इधर उधर गई तो वरदान कौन ले जाएगा, पड़ोसी ले जाएगा, पास वाला ले जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है हर एक को कि हम आए हैं बाबा के साथ का अनुभव कर। मधुबन में अभी भी बाबा है, बाबा तो आज भी मैं देख रही थी, हमारे सामने जो मेहमान आए आज सुबह, उन्होंने बॉम्बे से आए थे, फिल्म इंडस्ट्री के सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन, शांति स्तंभ पर गए, बोले बाबा मेरे को कुछ कह रहा है, बाबा मेरे को प्रेरणा दे रहा है, बाबा दिखाई दे रहा है। अब एक व्यक्ति जिसने बाबा को देखा नहीं, स्थान को नहीं देखा, उसको बाबा दिखाई दे रहा है, बाबा प्रेरणा दे रहा है। हम बच्चे जो बाबा को जानते हैं, क्या बाबा हमारे साथ नहीं है? तो इस भट्टी में पहला हमारा अनुभव होगा कि बाबा हमारे साथ, और आप देखेंगे कैसे बाबा कर रहा है। बाबा भी साथ है, मम्मा भी साथ है, दीदी भी साथ है, दादी भी साथ है, मनोहर दादी भी साथ है, चंद्रमणि दादी भी साथ है, सब हमारे साथ हैं, जगदीश भाई भी साथ है, जिन्होंने इतनी सेवा की है वो सारे के सारे आपके साथ। देखना कैसे आपके साथ सर्कल बना के बैठे होंगे और आप बीच में होंगे, कैसे आपको भरपूर कर रहे होंगे, कैसे रास करा रहे होंगे। और दूसरी बात हम आपको बताएं, मधुबन के कण कण में बाबा ने ऐसा स्नेह भरा है, ऐसा बाबा ने उसमें शक्ति भरी है, लेकिन वो कण कण हमें स्नेह दे रहा, शक्ति दे रहा है, वो अनुभव इस भट्टी में होगा। अब मैं आपको बताऊं, चारों धाम की यात्रा तो सुन लेते हैं, जब नीचे से आते हैं दौड़े 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 आते, चलो 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 भी, लेकिन वो धाम में क्या हुआ, बाबा ने क्या किया, वो तो पता ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। हिस्ट्री हॉल गए थे, हिस्ट्री हॉल में बाबा ने क्या कहा है, बच्चे जब कोई उलझन हो तो वहां आके बैठ जाओ। हिस्ट्री हॉल में बाबा वहां पर बच्चों से मुरली चलाते थे, और मुझे याद है जब साकार बाबा मुरली चला रहे होते थे उस समय ग्रुप बैठा होता था, बाबा बीच में मुरली चलाते चलाते खड़े हो जाते थे, बच्चों के स्नेह के कारण खड़े होकर के एक के पास जाके दृष्टि देते, और दृष्टि देते रहे, बाबा दृष्टि दे रहे, बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ गए, वतन में चले गए, बच्चे वतन में, बाबा और बच्चे और कोई नहीं है। और बाबा ने वहां पर बैठ करके सब बच्चों को इतनी पालना दी, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, बच्चों की पालना दी, बच्चों को दृष्टि से भरपूर किया, वरदान दिए, लास्ट में बाबा ने वहां से बच्चों को कहा अच्छा विदाई। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा के जो चित्र आप देखेंगे, बाबा ने किस प्रकार से बच्चों की पालना की। तो हिस्ट्री हॉल का मतलब ये नहीं कि हम जाके बैठ गए, लेकिन वहां वो अनुभव करना है, बाबा सामने खड़ा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा चला रहा है, ये जब अनुभव करेंगे तब देखेंगे बाबा कैसे हाथ पकड़ के चला रहा है। फिर जब आप सुबह यहाँ आंगन में चक्कर लगाएंगे, मालूम है बाबा क्या करते थे, बाबा यही मई जून का महीना होता था, कभी कभी सितंबर अक्टूबर का महीना, बड़ा अच्छा मौसम, अमृत वेले योग के बाद बाबा जो है आंगन में खड़े हो जाते हैं, और आंगन में खड़े हैं एक माशुक और सब आशुक वहां खड़े, एक सूर्य बाकी सितारे वहां टिमटिमा रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य होता था। और बाबा चलते दृष्टि देते, बाबा बच्चों को वरदान दे रहे, और इतना अव्यक्त स्थिति में बाबा चलते जा रहे हैं। फिर उस समय ये जो ऑफिसेस हैं वहां छोटे छोटे ऐसी पुरानी सी सीढ़ियां होती थी, बाबा वहां खड़े हो जाते और बाबा किस जैसे स्टार्स में लाइट भर रहा है, चमकीले सितारे बनो, और ये लाइट सारे विश्व के अंदर फैले, बाबा दृष्टि देते उनको उड़ा देते थे। फिर आगे बढ़ करके बाबा हमारे ऑफिस के बाद जो थल्ला है वहां खड़े हो जाते थे, वहां वो थल्ला है, छोटी सी पहाड़ी है, थल्ला नहीं वो पहाड़ी है ऊंची नीचे, वहां खड़े होकर के बाबा क्या करते थे, बच्चों को वरदानी बोल बोलते थे। फिर बाबा गेट के पास जाते जहां श्री कृष्ण का चित्र है, वो पहाड़ी है, जहां वो थल्ला बना वो पहाड़ी है, बाबा वहां खड़े हो जाते थे और बाबा कहते थे फरिश्ते सारे विश्व में उड़ जाओ। अब माउंट आबू ही नहीं देखा, विश्व में क्या उड़ेंगे। बाबा ने बच्चों को उस समय ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसी ड्रिल कराई कि फरिश्ता स्वरूप क्या है वो बाबा ने कराया। फरिश्ता क्या करता है, सारे विश्व में भ्रमण करता। तो वो जो बाबा ने ट्रेनिंग दिया, बाबा ने जो बच्चों को सिखाया, बाबा ने खुद किया। उस समय बाबा कहते थे विश्व में सेंटर खुलेंगे, अरे भारत में ही सेंटर नहीं थे, 50-60 मुश्किल से 20-25 सेंटर थे, धीरे से 50-60 हुए, फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद धीरे धीरे सेंटर खुलने लगे। मुख्य 8-10 सेंटर होते थे, एक कमला नगर, एक होता था पंजाब की तरफ, एक यूपी की तरफ, एक बॉम्बे की तरफ, एक पूना की तरफ, कानपुर, पूना, पंजाब, करनाल, ऐसे सारे सेंटर, दिल्ली के दो चार सेंटर थे, बस ऐसा ही था। लेकिन बाबा ने वो ऐसा रूप दिखाया कि भविष्य का नक्शा, सारे विश्व को आपको स्वर्ग बनाना है, वो बाबा ने करके दिखाया। तो ये जो आपको भट्टी में आने का मौका मिला है, बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप। मैं देखती हूँ कभी कभी क्या है, भट्टी की क्लासेस करते हैं, क्लासेस करने के बाद किसी न किसी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, अच्छा मेरे को बताओ मेरा योग कैसे लगे, आप योग कैसे लगाते हैं, सारा दिन एक ही बात, योग कैसे लगे, योग कैसे लगे। एक व्यक्ति एक चार्ट दे देता, दूसरा दूसरा चार्ट दे देता, तीसरा तीसरा चार्ट दे देता, सारा टाइम चार्ट लिखते रहते हैं। अरे बाबा ने क्या कहा, दादियों ने कभी कहा योग नहीं लगता, दादी जानकी को देखा, वो सारा टाइम बाबा की याद में मस्ती में नाचती ही रहती है, बाबा ने कभी कहा कि मेरे को ऐसा है। तो हम सारा दिन भट्टी में भी बैठेंगे, क्वेश्चन एक ही है कि मेरा योग नहीं लगता। आज इस भट्टी के अंदर एक भी ये नहीं कहे कि मेरा योग नहीं लगता, कहोगे पक्का? मैं पूछूंगी लास्ट में, अरे बाबा के स्नेह में खो जाओ, ये योग है और क्या करेंगे। सारा दिन एक ही बात, मन नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, बुद्धि भटकती है। बाबा बच्चों को याद करता है, बाबा सब बच्चों को वतन में बुलाता है, सामने बिठाता है, और बच्चे ऐसे नटखट सारा दिन कहेंगे बाबा मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता है। बाबा भी हंस देते हैं, कहते ये तो ऐसे भोले भाले हैं, बाबा सामने बैठे और बाबा को कहते मेरा योग नहीं लगता। तो ये भट्टी का एक और एम बताऊं, यहां से पक्का करके जाना है, हम बाबा के लाडले बच्चे, हम बाबा के प्यारे बच्चे, बाबा के सिक्की लदे बच्चे, बाबा मेरा, मैं बाबा का। लेकिन ये शब्द भट्टी में स्वाहा, ये स्वाहा करके जाने, लास्ट में पूछेंगे, आप पूछना, फिर नहीं कहना इधर उधर घूमना नहीं, बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाबा इतना कुछ समझा रहा है, हम सारा दिन बुद्धि को घुमाते रहते इधर से उधर इधर से उधर। ये एक पक्का करना, क्या क्या पक्का करेंगे, एक तो मैं बाबा का, दूसरा फरिश्ता स्वरूप, तीसरा क्या करेंगे वो बताओ, भूल गए अभी से ही भूल गए तो फिर क्या करेंगे, अरे बाबा यहाँ है, बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने हूँ, साकार में बाबा मेरे सामने है, हम साकार बाबा मम्मा और दादियों के साथ। ये अनुभव करने के लिए आपको बुलाया है, नहीं तो ज्ञान तो भरपूर है। मुरली की पॉइंट पूछेंगे ना इनसे, फर्स्ट एक सेकंड में फास्ट, कोई ज्ञान की बात पूछेंगे फर्स्ट फास्ट बताते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है ना, लेकिन बाबा को अपना साथी, बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, वो अनुभव चाहिए। फिर दूसरी बात, आपको और कहां भट्टी करने का मौका मिल रहा है, ये मेडिटेशन हॉल, इसकी विशेषता को जानते हो, कौन जानता है? देखो ये हॉल जो है बाबा की तपस्वी भूमि, ये पहले पहाड़ी थी और इस पहाड़ी पर ये नीचे के अंगूर की बेल ऊपर आती थी, और बाबा चित्र देखेंगे ना हिस्ट्री हॉल में, बाबा यहाँ ऐसे बहुत मस्ती में बैठ रहे हैं, तो बाबा यहाँ पहाड़ी पर आकर के योग करते थे, और फिर बाबा कहते थे, जब आते थे ना बाबा के सामने बच्चे, बाबा कहते थे यहाँ कोई लौकिक काम नहीं है आपको, आप सब पहाड़ों पर बैठ जाओ अकेले अकेले, सब बच्चे कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा तपस्या कर रहे हैं। फिर बाबा क्या करते थे, यहाँ पर खड़े हो जाते और नीचे बच्चे, फिर गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, आ जा रे आ जा रे, तो बच्चे कहते थे बाबा हम आ रहे हैं आपके पास, ऐसे धीरे धीरे ऐसा अनुभव करते थे, उड़ते उड़ते हम बाबा के पास जा रहे। तो बाबा इसी पहाड़ी पर खड़े हो जाते थे, फिर शुरू में बाबा मुरली में कहते थे ना महारथियों को सेमिनार करना चाहिए, वो कहाँ करते थे, गर्मी में इस पहाड़ी पर करते थे। तो ये जो पहाड़ी है बाबा की श्रेष्ठ तपस्वी जगह, और ये ऐसा स्थान है बाबा ने बच्चों को बहुत प्रेरणाएं दी तपस्या करने के लिए, अनुभव करने के लिए। तो इस पहाड़ी पर ये मेडिटेशन हॉल बना है। ये हॉल 1975 में बना है और 1976 में अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि इसी हॉल में हुई। पहले अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, फिर बाबा एक बार बहुत से बच्चे आ गए। कहाँ आए थे मालूम है? किसको कहाँ आए थे? बाबा यहाँ पांडव भवन के आंगन में आए। अव्यक्त बाबा बहुत ज्यादा रह नहीं सकते थे, होटल बुक किए थे, दो टाइम खाना मिलता था, सुबह 10 और 11 बजे नाश्ता और लंच इकट्ठा, और शाम को 5 से 6 बजे के बाद सबको खाना मिल जाएगा। फिर बाबा के लिए स्टेज बनाई थी। ये बाबा का जो कमरा है ना, इधर नहीं उधर, दादी का ऑफिस है, वहाँ बहुत बड़ी स्टेज बनाई थी बाबा के टाइम पर। बाबा वहाँ आए अव्यक्त बाबा, और सारे बच्चे आंगन में बैठे, कोई छत पे बैठा, कोई इसकी हाल की छत पे बैठा, कोई इसकी छत पे बैठा, कोई इसकी छत पे बैठा। फिर 1976 में यहाँ अव्यक्त बाबा आने लगे। और बाबा कहाँ? ये है बाबा की सीट पीछे, अभी थोड़ा आगे हमारी कुर्सी। बाबा यहाँ और बच्चे सब ऐसे बैठे हैं जैसे फैमिली में, बाप और बच्चे। यहाँ कोई सोफा नहीं था, कुछ नहीं था, एक कुर्सी थी दीदी के लिए। दादी भी यहाँ, सब दादियाँ यहाँ, सब वरिष्ठ भाई यहाँ, सब यहाँ बैठे होते। ये सारी जगह उनकी है, ये हमारी दादियों की जगह है। दादियाँ यहाँ, बाबा यहाँ। तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने भी बच्चों को वरदानों से भरपूर किया। तो इस हाल में डबल अनुभव, साकार बाबा के साथ का तपस्या का। अव्यक्त बाबा आपकी भट्टी कराएंगे अभी, आप इसमें देखना, बाबा भी भट्टी कराएंगे, अव्यक्त बाप दादा भी कराएंगे, लेकिन वो अनुभव कौन कर पाएगा? जो उस लगन में होगा, उस प्यार में होगा, तो वो अनुभव कर पाएंगे। इसलिए आप सभी को ये अनुभव करने के लिए यहाँ भट्टी में बुलाया है, और ऐसे अनुभव फिर कभी नहीं मिलते। परिवार में रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, जल्दी जल्दी क्लास किया, जल्दी जल्दी दौड़ना है, घर में ये काम है, नीचे पार्टी में आते हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन यहाँ का अनुभव ऐसा अनुभव होगा जो सारी कलप के अंदर बाबा और मैं, दादी और मैं। तो आज के दिन आप सबका बहुत बहुत हम स्वागत भी करते हैं, आपको मुबारक भी देते हैं। बाबा आप सबको वरदानों से भरपूर करेंगे, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे, और देखना कैसे बाबा उड़ाएंगे, फरिश्ता बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी आज पक्का कर लेना है, और बिल्कुल साइलेंस में। कई बार हम देखते हैं ना, भट्टी पूरी होती है, कारोबार के लिए बाहर खड़े होते भाई बहने, ये कारोबार है, ये कारोबार है, भट्टी में कारोबार की बात नहीं करना। इससे मिले आंगन में बैठे, इससे कारोबार किया, अच्छा तुम हमारे पास आना, ये है हमारे पास, ये कोई कारोबार की बात भट्टी में नहीं, बताया ना, कारोबार की बात वहां जाके बात करते रहना फोन से, इधर नहीं करने का। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, सब ठीक है। आपको देख के मैंने कहा कमाल है, सारे ग्रुप को 200 की संख्या, ये तो हाल ही भर गया है, संख्या बढ़ा दी आपने। मैंने कहा इतने भरपूर है, इतने भरपूर है, तो भी संख्या बढ़ा दी आपने, कितना ज्ञान भरपूर है। चलो कोई बात नहीं, बाबा बैठा है, बाबा बच्चों की ध्यान रखता है, आप बाबा के घर में हैं, बाबा के दिल तख्त पर बैठो, बाबा की गोदी में बैठो, और आपको इन एडवांस बहुत बहुत मुबारक। और अब इसके बाद आप सबको क्या मिलेगा, क्या चाहिए? टोली चाहिए, खाएंगे, टोली तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, है? तो बाबा क्या कहते थे आपको पता है, क्या टाइटल है आपका? बाबा कहते थे ये मेरे टोल पुट है, ट्रोलपुट समझते हैं, बहुत मीठे मीठे। सेंटर पर तो क्या है, कभी कभी ट्रोली मिलेगी क्लास के बाद, कोई बड़ी बहन आ गई तो मिलेगा, गुरुवार को मिलेगा, संडे को मिलेगा, दादियां आएंगी तब मिलेगा। और यहाँ मधुबन में रोज क्लास के बाद ट्रोली, बाबा ने शुरू से सिस्टम बनाया था, सबको ट्रोली मिलती थी। फिर उसके बाद प्यारी दादी ने भी वही सिस्टम रखा, क्लास के बाद सबको ट्रोली मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बाबा कहते ये सब मेरे टोल पुट हैं, बहुत मीठे सिक्की लदे हैं, इसलिए सबको प्यार भरी, बाबा के स्नेह भरी टोली। और दादी जानकी जी लंदन में हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पर भट्टी चल रही है। दादी जानकी जी ने आपको याद दी है। गुलजार दादी दिल्ली में हैं, रतमय दादी जी शांतिवन में हैं, और निवे भाई बॉम्बे में हैं, सॉरी अहमदाबाद में हैं। तो सब ने आपको बहुत बहुत याद दी है। लेकिन अब योग में बैठेंगे दो मिनट, फिर बाबा के स्नेह की टोली आप सबको मिलेगी। ओम शांति।
दीदी को बहुत बहुत दिल का थैंक्स देते हैं।
कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के, कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरनी सजा के, कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के, कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा के, कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के, कहाँ छुप गए तुम बाबा।